गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 कृष्ण परमात्मा जगत गुरु को श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 21 और 22वें श्लोक को पढ़ेंगे।
तेतम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम्, स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीर्णे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति,
क्षीर्णे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति
एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गता गतम् काम कामालभन्ते, अनन्यश्चिन्तयन्तः माम्, ये जनाः पर्युपासते, येषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरिः ओम।
कल हम बात कर रहे थे कि गहराई में मन की सतह तक बहुत ही कम लोग जाते हैं। किर्कगार्ड का उसमें कुछ विशेष नाम है। उसने कहा कि हम सदा मन के साथ में बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसार का अर्थ है कि संसरति, जो चलता रहता है। जैसे कि गाड़ी का एक चक्र होता है, यंत्रवत परिवर्तन्ति सुखानी च दुखानी च। जो पहिया का छोर ऊपर गया, ऊपर जाने के पहले वो नीचे आ जाता है। जैसे कि हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाएं, वो कितना विशेष क्यों नहीं हो, वो भीड़ भड़क का तो रहता है, वो तिरुपति जी के सामने आते आते आउट, सामने आए क्या और बाहर गए क्या। तो हमने मंदिर में अंदर आए कि बाहर, वो बाहर निकलने के लिए ही अंदर आए, एक स्पष्ट बात। तो ऐसे ही हमारा जन्म क्यों होता है, मृत्यु के लिए जन्म होता है। तो संसार जो है, इसमें हम संसार के मध्य इतने उलझे, आत्मा क्या है कुछ पता नहीं है। वो कल हम बात कर रहे थे कि एक सज्जन है, मित्र है, कोई पिछले 10 साल से अहमदाबाद आने के पहले तक हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चों को पढ़ाते रहे। वो आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो 14 साल तक पढ़ाए। वो जो बच्चे पढ़े थे अब चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस होकर के भी रिटायर हो रहे हैं। वो पढ़े लिखे बहुत होते हैं, 10-12 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं तो उसमें से कोई 90-100 आईएएस होता है, बाकी सब आउट। तो पढ़े लिखे कोई कम नहीं होते, किंतु उनकी पढ़ाई कहां तक होती है, वो समुद्र के किनारे घूमने तक की, अंदर जाने वाली नहीं है। उन्होंने कभी समुद्र को छुआ तक नहीं है, वो किनारे किनारे घूम के आ जाते हैं। रेती जो गीली होती है उसमें पांव भी कभी गीला नहीं किया, सुपरफ्लस उनकी पढ़ाई होती है दुर्भाग्य से। तो ये कहते हैं कि मुझे ईश्वर में बहुत भरोसा था, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था, गुरु में श्रद्धा थी, धर्म में विश्वास था। अब मेरा कोई विश्वास नहीं रहा, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं, गुरु में विश्वास नहीं, कोई पूजा में नहीं, कोई पाठ में नहीं। क्यों नहीं, मुझको कैंसर हो गया है। अभी कैंसर होने के लिए ईश्वर का क्या संबंध है। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, तुम अपने कर्म को भोगो भाई, मेरा कर्म मैं भोगूंगा, मेरे को जो तकलीफ है तो मेरा कर्म का। अरे राम को क्यों वन में जाना पड़ा है भाई, कृष्ण के पांव में क्यों तीर लगा है मुझे कहो। पांडव कौरों का युद्ध हो गया, कृष्ण देखते रहे, रहे रहे उनके अपने परिवार के लोग आमने सामने कट गए, देखते रहे। ये तो कर्म है, विधि विधान है, उसमें किसी की मुक्ति नहीं है, ईश्वर का क्या दोष है। किंतु वो कहते हैं अब सब उखड़ गया। चिकित्सक पहले कहते थे होगा होगा होगा, अब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व ही हमारे मन का स्वरूप है। चाहता है नहीं, चाहता हूं बोलने के साथ में नहीं चाहता हूं हो जाएगा, रुचि कर है कहने के साथ में अरुचि कर हो जाएगा, वो मुझे अच्छा लग रहा है बोलने के साथ में बस ये बहुत बुरा है यह भी हो जाएगा, बड़ा दुष्कर बात है। तो कहते हैं कि जो सकाम साधना करते हैं, जो सुख की कामना करते हैं, दुर्भाग्य है उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि सुख मांगे तो साथ में दुख तो रहता ही है। यही संस्पर्श जाहा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ये जितने संस्पर्श के जो भोग है, विलास है, आनंद है, वो तमाम अंत में दुख ही देने वाले हैं। वो क्या करेंगे, बहुत मिर्ची खाना पसंद है तो ज्यादा मिर्ची खाए तो फिर पेट में अल्सर हो जाएगा, और भी ज्यादा खाए तो पाइल्स भी हो जाएगा। तो जो जीभ के लिए जो स्वादिष्ट है फिर वो शरीर के लिए और भी नुकसान करता है। हम जर्मनी में रहे, जिनके यहां रहे थे उनकी बेटी दांत की बड़ी सुप्रसिद्ध डॉक्टर थी। रात आधी कोई फोन आया है, सिनेमा का बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध एक्टर है, उसके दांत में बहुत दर्द है, अब जल्दी से आइए। तो हमने उनकी माताजी से कहा कि लिलियम के साथ हम भी चले जाएं, देखेंगे हॉस्पिटल भी, हीरो को भी देखेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक बात है, बर्फ गिरी हुई है, हम वहां गए वो ऐसे करके बैठा है, कहां तकलीफ है ये देखा, उसको तो निकालना पड़ेगा, निकालना है तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कितने सारे पेपर साइन करने, उसने सारे साइन कर दिए, उनको एक इंजेक्शन लगाया, पकड़ा तो जोर से चिल्लाया, इंजेक्शन की कोई इफेक्ट ही नहीं है। फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया तब भी कोई असर नहीं है। इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, ये यहां पर खोटा करने के लिए, बोलते लोकल एनेस्थेसिया, LA बोलते हैं, लोकल एनेस्थेसिया। वो तीन बड़ी बड़ी सुई लगा दी, उसको क्या इफेक्ट नहीं है। फिर कहा तुम्हारा हिस्ट्री चार्ट दिखाओ, कंप्यूटर में देखा, पता हो गया बड़ा ड्रग एडिक्स था। वो ड्रग एडिक्स क्या है, पहले तो तंबाकू खाता रहा, बाद में अफीम खाता रहा, बाद में चरस गांजा खाता रहा, उससे पूरा नहीं हुआ, जीभ के ऊपर में वो बिच्छू का डंक लेता रहा और उसके बाद में सांप का डंक लेता रहा, तो उसके शरीर में इतना जहर हो गया है कि वो कोई भी एनेस्थेसिया उसको इफेक्ट करती नहीं। उतनी बात नहीं है, उसको टोटल एनेस्थेसिया भी इफेक्ट नहीं करती है। बताइए जिसको वो आनंद समझ रहा है, वो कितने दुख की बात है कि उसको कुछ नहीं करना, उसके हाथ पांव बांध दिए गए, हाँ, और मुंह तो बंद कर ही नहीं सकते क्योंकि मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, तो मुंह में भी एक जैक लगा दिया कि वो ऐसा ही रहेगा, वो बंद ही नहीं कर सकता, आवाज आ करेगा, दांत निकाल दिया, क्या करो क्या आप उसका। तो जिन वस्तु विषय को, जिन तृष्णा को, जिस भोग को आप आनंद समझते हैं, वो कितनी चरम पराकाष्ठा तक एक दुख का विषय होता है, बड़े बड़े मुश्किल की बात है। तो अगर मान लीजिए आप कहें स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे यहां आए, तो मगर कोई कह दे ऐसा कि स्वामी जी आप तो आए, आपकी परछाई को नहीं लाना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी परछाई क्या होती है, अगर सूर्य रहेगा, लाइट रहेगी, तो हमारी परछाई कहीं तो गिरेगी ही गिरेगी, वो तो इंसान आया तो, अरे वो तो पेड़ की भी परछाई है, पौध की भी है, पशु की भी है, पक्षी की भी है, अरे वो हनुमान जी ऊपर उड़ रहे हैं तो उनकी परछाई समुद्र में, तो परछाई पकड़ करके वो समुद्र में रही माता है, सब लोगों को खाती थी, तो कैसे हो सकता है। हम केवल इतना कह सकते भाई परछाई मेरे साथ में नहीं आएगी, मेरे पीछे आ जाएगी, परछाई तो आएगी, बिना परछाई के इंसान का प्रवेश नहीं। तो जो सुख इच्छता है, सुख की कामना करता है, सुख की ऐषणा करता है, दुख इज जस्ट फॉलोइंग, दिस इज जस्ट लाइक ए शैडो। वो तो उसका उपाय ही नहीं है, तो क्या करना? जो अभाव है, गरीब आदमी को अभाव है मेरे पास कोई चीज नहीं है, और अमीर आदमी का अभाव है उसके पास में बहुत चीज है। ये बात बताएं कि बुद्ध के जीवन में कोई कमी थी क्या? यशोधरा इतनी सुंदर स्त्री थी, राहुल उतना प्यारा बेटा था, किंतु यह नहीं, विश्व की तमाम स्वप्न सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। यशोधर ने कहा विश्व की श्रेष्ठ सुंदरियां इनकी सेवा में लगाओ। फिर भी दुख है किस बात का? ओ, एक दिन रात में अपना बाल पकड़ के काट के फेंक करके चले गए। क्यों? वो कभी बाहर नहीं गए। जब एक संतान हो गई तब तक उसको यशोधर ने बाहर ही नहीं जाने दिया। एक दिन गए छन्ना के साथ में, छन्ना उनके साथ ही थे। एक वृद्ध को देखा है, छन्ना ये क्या है? ये वृद्ध है। वृद्ध क्या होता है? अरे वृद्ध क्या होता है? वृद्ध वृद्ध होता है। और वृद्ध क्या? बोले शरीर जो आया है तो धीरे धीरे करके वृद्ध हो जाएगा। अच्छा, वृद्ध हो जाएगा तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी ऐसे झुक के चलेंगे। हाँ, चलेंगे झुक करके। अभी कुछ देर के पहले एक महापुरुष बैठते हैं, मुझे कह रहे थे आपकी उम्र 61 साल की हुई दिखती नहीं। मैं 61 नहीं है, 67 पूरा हो रहा है, मगर गांव भर दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ खा के जल्दी बूढ़े हो गए। अपने ढंग से ही खाते, अपने आश्रम में रहते, कहीं बाहर नहीं रहते, तो ऐसे ही रहते थे। ओ, स्वर्ग में अप्सराएं भी ऐसे रहती हैं, 16 साल हो जाए तो उसके बाद में अटक जाती है। कितना जीवन हो उसके बाद में वृद्ध नहीं होती है। ये बुद्ध भी है, उन्होंने वृद्ध को देखा, एक वृद्ध को देखा। ये वृद्ध है? हाँ वृद्ध है। ऐसा होना? हाँ। अब वृद्ध को देखा, अब बीमार को भी देखा कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बीमार है, ये रुग्ण है। ये रुग्ण क्या होता है? बोले ऐसे होता है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये व्याधि तो आएगी। शरीर तो व्याधि मंदिरम है, शरीर को तो ये होना ही होना है। अब देखा है एक मुर्दा है, उसको बांध रखा है। राम बोलो भाई, राम नाम सत। ये क्या है? ये सोया पड़ा है, उसको बांध के। बोले सोया नहीं है, ये गया है। गया मतलब क्या? श्मशान ले जाएंगे। श्मशान क्या होता है? अरे श्मशान तो अंतिम घाट है, अरे श्मशान तो दिव्य चेतना है, जहां जाकर के हम सब लोग का कल्याण होता है। श्मशान ना हो तो समाज में मुश्किल हो जाएगी। मसान को धन्यवाद कहना चाहिए, हमारे मुर्दों को वहां पर प्रवेश करके जला कर राख करता है। जला देंगे? हाँ जला देंगे। हाँ, एक साधु को देखा है, ओ भिक्खु को देखा है, चेहरे पर आनंद है, तेज है, प्रसन्नता है, मुदितता है। कौपी नवंतम खलु भाग्यवंतम, चेहरे में एकदम शाता है, शांति है, संतोष है। ये कौन है? ये भिक्खु है, ये साधु है, ये संत है। ये क्या करते हैं? थोड़ा शरीर के लिए चाहिए उतना भीख मांग लेते हैं, बस फिर ध्यान में रहते, आनंद में रहते हैं। इन ऑल कंडीशन आई एम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म के चिंतन में रहते। कितना खुशी है। बोले यही वास्तविकता है, चलो घर। रात में उठ करके अपने बाल पकड़ के तलवार से काट दिए, गहने निकाल दिए, राजमुकुट निकाल दिया, झरकसी जामा निकाल के रख दिया, तब तमाम जो राजवी पोशाक निकाल के, छन्ना लो चलो। वो राजा के समान वो भिखारी बन गया। बुद्ध गलियों में घूम करके भिक्षा मांग रहे, महावीर को कोई कमी थी वो भी भिक्षा मांग रहे। इसको दुख है हमारे पास संपत्ति अधिक है इनका, और वो गरीब को दुख है हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुख किसको नहीं? ऐसा नहीं, सबको दुख है। जिनके यहां 12 कमरे हैं, पति पत्नी दो ही है, 28 तो नौकर चाकर है, 6 गाड़ियां हैं, झाड़ू पोछा करने वाले भी है, रसोई बनाने वाले, बगीचा बनाने वाले, धोबी एक अलग आता है, बर्तन वाला अलग आता है, क्या क्या होता है, आपके साथ चलने वाला एक अलग है, कोई संतान नहीं है, और खाने के लिए ढेर है पूरा यहां से वहां तक, मगर डायबिटीज है, लंबो सेक्रल पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आर्थराइटिस है, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हार्ट है, कभी भी टूट सकता है, 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं। बताओ क्या करो इसको? ठीक, इतने बड़े बंगले को क्या करो? बताइए, कुछ नहीं कर सकते। जो है उसका भी दुख, जो नहीं है उसका भी दुख, पीड़ा ये जगत की बात विषम है, किंतु जानना ये दुख है, उसका नाम है जैसे कि भोजन मिलता है उसको बोलते हैं भोजनालय। हाँ, पढ़ाई होती है उसको विद्यालय, ग्रंथ होते हैं उसको ग्रंथालय, ईश्वर बैठते हैं देवालय, संसार का नाम दुखालय। दुख आलय दुख से भरा हुआ है तो सुख की कहां आशा करो। इसलिए हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ते, तो ये हमारा पुण्य जो है वो स्वर्ग की अप्सराओं के बीच में रह करके भी, कहते हैं पुरुरवा एक देव थे, पुरुरवा देव थे, उन्होंने देव सभाओं से कहा मुझे थोड़ा पृथ्वी पर जाने दीजिए, क्यों मैं इस स्वर्ग की अप्सराओं से उब गया हूं। व्हाट ए पिटी, स्वर्ग की अप्सराओं से मैं उब गया हूं, कितनी मुश्किल की बात है। ये बिना चीनी के चाय किसी को अच्छी लगती है क्या, बोलो बोलो, नहीं लगती है। तो चाय में आधी चम्मच, एक चम्मच, वो काठियावाड़ी है तो छह चम्मच, हाँ उसके वो चम्मच खड़ा रहना चाहिए, कड़क मीठी आमने सामने ओट चिटकना चाहिए, ठीक है मान लिया। बिना चीनी के चाय अच्छी लगती नहीं। मान लीजिए गिरीश भाई आपके ससुराल में चीनी की मिले हैं, हाँ चारू माता जी के ससुर को, उनके पिताजी को चीनी के मिल हैं, रोज एक बोरी भेज देंगे, फिर आप तो मुट्ठी भर के डालेंगे क्या, दाल में छह मुट्ठी, एक कप चाय में एक मुट्ठी, नहीं होता है महाराज, पागलपन है क्या। हमारे ससुर की मिल सलामत रहे, हम बोलेंगे एक बोरी भेज दो खत्म होगी, तब तीन महीने चार महीने पांच महीने में दूसरा मांगेंगे, रोज एक नहीं चलेगा। वो जो नमक है, बिना नमक के स्वाद नहीं, किंतु अधिक हो गया तो दुष्कर हो जाएगा। तो हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में भी जो क्या बोलते हैं अधिक होना मुश्किल है, वो अधिक हो गया तो मुश्किल है। ज्यादा ठट्ठा भी ठीक नहीं, ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं, ज्यादा गमगीनी करके बैठना भी ठीक नहीं। जो है वास्तविकता प्रकृति और परमात्मा से कुछ भी आकांक्षा नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास में स्वामी विवेकानंद का जब संन्यास, नोरेन नाम से आते थे, नोरेन के पिताजी की जब डेथ, वो बड़े जमींदार थे दत्त महोशाय, उनके देहावसान के बाद में बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के गए थे, बहुत बड़ा कर्जा। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी भी यही कहते थे कि सन्यासी आश्रम ना बनाए और बनाए तो मरने के पहले बड़ा कर्जा छोड़ के जाए, क्यों गद्दी के लिए झगड़ा ही नहीं होगा, झगड़ा तो होता है वो पैसा होने से होता है, और खुद भी ऐसे रहे तो एक 19-20 हजार का कर्जा छोड़ के गए थे। हाँ छोड़ देना कर्जा क्या होता है। ये नरेंद्रनाथ जी उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं कलकत्ता की गलियों में, शिमला स्थित कहीं पर भी उनको नौकरी नहीं मिली, भूखे हैं। घर में आकर बोलते हैं मां थोड़ा जल देगी, क्यों खाना खा ले कुछ भी, नहीं नहीं मैं अपने दोस्तों के यहां खा के आया हूं, झूठ बोलते थे। इतने दुखी थे, इतने क्लांत थे, एक दिन जाकर के श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में रो पड़े, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। व्हाट ए ग्रेट फ्रस्ट्रेशन। अर्जुन का अगर आत्मकल्याण हुआ है विषाद में से, स्वामी नरेंद्रनाथ भी बने विषाद में से, विषाद तो चाहिए, विषाद की भूमिका के ऊपर ही अध्यात्म की भूमिका बनती है दुख। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा देखो सामने तो जले जाओ, काली वहां रहती है, काली को जाके बोल दो भवतारिणी को तुमको क्या चाहिए, जाओ जाओ आप भी चलो ना, ना मैं नहीं चलता हूं, मैं दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तू जा जो चाहिए मांग ले, मां देगी तुझको जा। ओ गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, नरेंद्रनाथ दत्त गए मां के पास में, एकदम बस कोई भी विचार नहीं मन में, विचारहीन विचार शून्य, एकदम शांत, शांतोयम आत्मा आनंदोयम आत्मा, भगवती जगत जननी की उपस्थिति में अपने अस्तित्व को खो चुके, कुछ नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक तो बाहर से ठाकुर बोले नोरेन की बच्चे क्या हो रहा है। हाँ वो बाहर आए गदगद है, पुलकित है, आनंदित है, मांग लिया से, हाँ क्या मांगा? नौकरी मांगा, चोकरी मांगा, पैसा मांगा, क्या मांगा? ना ना कुछ भी नहीं मांगा। अरे जो तुझे कहा तू जा वहां मांग, जा फिर से जा, धक्का मार के भेज दिया 3 दफे। जब ठाकुर ने बहुत कहा मुंह से कुछ बोलना, तो बोले आम के विवेकताओ, हमें विवेक दीजिए, हम के वैराग्यताओ, हमको वैराग्य दीजिए। जगत जननी जगदम्बा जब कुछ देने के लिए हाथ पसार करके खड़ी है, तो नरेंद्रनाथ दत्त विवेक मांग रहे हैं, वैराग्य, क्योंकि उनको जीवन की एक दुविधा और सुविधा के बीच में जो पतली रेखा है, सुख और दुख के बीच में एक रेखा है, उसकी उन्हें ध्यान है। देखिए ध्यान दें, एक स्पुटनिक जो जमीन से उठकर के आसमान में जाता है, वो एक रेखा ऐसे आती है जहां जमीन का गुरुत्वाकर्षण भी है, आकाश का गुरुत्वाकर्षण है, उन दोनों के बीच में ये जब निकलता है स्पुटनिक, एक धक्का लगता है, यान को धक्का लगता है, उस समय निकल गया, बस निकल गया, नहीं तो आग लग सकती है। श्रीणी पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामाला बनते। आप कितने वेद पढ़ लीजिए, कितने अच्छे कार्य कर लीजिए, कितने यज्ञ कर लीजिए, स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग के बाद में एक आपके टिकट पूरा हो गया, उतरो खत्म। और नहीं, सिनेमा जाते हो एक टिकट लेते हो, बड़ा अच्छा एयर कंडीशन है, बॉक्स में बैठा देंगे, बालकनी में बैठा देंगे, टिकट पूरा हो गया हो बल निकलो, अभी दूसरे लोग आएंगे, नया टिकट लो। स्वर्ग का भी ऐसा है, कब तक ऐसा है? हम लोग ये मांगते हैं वो मांगते हैं, मंदिरों में जाकर मस्जिदों में जाकर के, जब मांगना बंद नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, कोई आशा नहीं है, कोई भी आकांक्षा नहीं है। निष्काम भाव से जो उपासना करे, कोई कारण नहीं अकारण, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं, मुझे अपनी खुशी की, मुझे अपना अस्तित्व ही नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ यू बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, आपके आनंद के लिए मेरा आनंद है, आपको दुख है तो मेरा दुख है। मैंने क्या कहा, हमारे गुरुजी महाराज हैं तो वो उनके पास सम्मिलने, मेरा अंतिम दर्शन गुरु महाराज का, वो लंबे पांव करके बैठे रहे तो हमने उनके चरण उठा के अपने गोदी में रखे, उनके चरण को दबाते रहे, फिर घुटनों को दबाते रहे, जंघाओं तक दबाते रहे, उनका गुरु महाराज थोड़ा लेट जाइए तो पीठ दबा दें, तो मुझे कहे अध्यात्मानंद जी कोई मेरे शरीर को स्पर्श करता है ना मेरे शरीर में आग लगती है। मैंने कहा आधे घंटे से मैं पांव दबा रहा हूं, तुम खुशी हो रहे हो ना? फिर मुझे क्या कहा, तुमने आनंद सिनेमा देखा है क्या? बोला नहीं देखा है। तो बोले चलो, तुम्हें चलने का सैर करने का बड़ा शौक है, डॉक्टर मुझे कहता है कुछ चलो आज थोड़ा कोशिश करते हैं चलने को, जिस भवन में रहते थे उसको एक चक्कर लगाया, बड़े मुश्किल से, बड़े मुश्किल से। हमने कहा स्वामी जी आप चल भी रहे हैं बोल भी रहे हैं थक जाएंगे। जीवन के अंतिम 8 साल तक उन्होंने क्या भोजन किया है, वो एक कटोरी दही में 3 कटोरी पानी डालकर के छाछ बना लेते हैं, सवेरे 10 बजे उसको रख देते हैं, तो दोपहर को 2 बजे वो जो पानी ऊपर आ जाएगा आँच, उसको निकाल लेंगे, उसको गर्म करके कहीं वही पीना है, उसको गर्म करके वही पीना है। 8 साल तक कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, कोई केला नहीं, कोई सेब नहीं, कुछ नहीं। परम भागवतीय पुण्य श्लोक खरणानंद स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा है क्या स्थित प्रज्ञ इस कल्प में संभव है, बोलिए स्वामी चिदानंद जी महाराज बैठे स्थित प्रज्ञ से भी ऊपर, क्या समझते हो? क्या गुरु महाराज जी ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, हाँ ऐसी अवस्था, चमड़ी और हड्डी एक है कुछ भी नहीं है। मैंने कहा स्वामी जी आपको कृपया बैठ जाइए, नहीं नहीं तुमको खुशी हो रही ना, फिर मिले ना मिले तुमको ये स्मृतियां बनी रहेंगी, आनंद की कहानी पूरी मुझे सुना दी, फिर कहे जब पहुंच जाओगे ना अहमदाबाद में तो फिर वो आनंद सिनेमा मंगा करके आश्रम के सब लोग साथ में बैठ करके देख लेना, सबको खुशी हो जाएगी। क्या खुशी हो जाएगी, एक इंसान को कैंसर हुआ हुआ है, उसको पता है कि 2 महीने से अधिक में जीने वाला नहीं हो, उसके डॉक्टर भेज देता है जाओ मेरा एक डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट है उसके पास में चले जाओ, और वो वहां पर मस रहता है, हे बाबू मोशा ऐसा करके बोलता है, और मैं तुमको जानता नहीं, अभी तो जानते हो ना, हाथ मिलाओ, कितनी खुशी है, मेरी यातना मेरा दुख है उससे मुझे क्लांत नहीं है, मेरी उपस्थिति से आपको कितनी खुशी हो रही है, मैं खुशी बांटते आनंद में रहो, आनंद बांटो, दुखी होना नहीं, दुखी करना नहीं, ईश्वर को भूलना नहीं। नवा अध्याय में ये कहना चाहता है, सुख और दुख तो साथ में आएंगे। समुद्र में ज्वार होता है तो बाटा भी तो होती है, सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त होता है, शीतकाल होता है तो उष्णकाल होता है। कल शाम स्वामी तद्रूपानंद जी महाराज से बात कर रहे थे, मैंने पूछा महाराज आपके बगीचे में तो सैकड़ों आम के वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो मोर लगे हुए हैं कि नहीं? वो मोर कहते हैं वो जो आम का जो फूल होता है मोर। बोले हैं अभी 10 मिनट से जो मोर मेरे सामने टहूक रहा है, मेरे लिए बोल रहे थे, जो मोर टहूक रहा है, फिर वो कैसे पूछ रहा है मोर, क्योंकि स्वयं को स्वयं की सत्ता का ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी सुंदर बात है। बोले जो 10 मिनट से मेरे सामने मोर टहूक रहा है, हाँ उसका क्या करे, मोर कहां लगा है, स्वयं को स्वयं की सत्ता की समानता नहीं है। देखिए क्या होता है, क्योंकि निश्चित ही हम समझते हैं कि हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन का योग क्षेम, हमारे जीवन की प्रतीति, प्रभु का अंतिम मिलन, योग का यही अर्थ है, जीवन का एक यही घट है। घटना परमात्मा में घटती ऐसा नहीं है, वो तो हम संभाल लेते हैं, किंतु जो घटनाएं हम में घटती हैं, क्षेम के योगक्षेमम, योगक्षेम का अर्थ है कि वो LIC वाले ऐसा हाथ रखे हुए हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ना, ऐसा हाथ बीच में एक दिया रखा है कि हम आपके दिए को संभाल करके रखेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम, और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। वो अपने ढंग से कहते हैं, किंतु हम समझते हैं कि यदि योगक्षेम का अर्थ हमारे घर में आटा दाल चावल आता रहे और बिजली चली गई तो कोई रिपेयर करा दे छत, तो ये तो होता ही है। ध्यान रखो, जिन्होंने परमात्मा की संपूर्ण शरणागति को स्वीकार किया है वहां ये तो होता ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। जिस समय आपको जिस वस्तु की जैसे जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता उस समय आपकी वो पूरी पूर्ति करता है, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो बहरा नहीं है, वो सुनता नहीं, वो नहीं ऐसा नहीं है, वो सुनता है, वो सहस्त्र शीर्ष पुरुष है, वो जितने मस्तक हैं सबसे वो सुन रहा है, जितनी आंख हैं सबसे वो देख रहा है, जितने चरण हैं उसी के चरण हैं। कभी जूते पड़े रहे किसी को तो पांव से इधर उधर नहीं करना, अपने गुरु के पादुका रहे तो कैसे उठा के रखते हो, ऐसे करो, समझो ये ईश्वर की ही चरण पादुका है। कहीं किसी के साथ में व्यवहार करना है तो कृष्ण कहते हैं कि एक बार हम अपनी मांग को छोड़ दें। द होल प्रॉब्लम इज हमारे जीवन में इतनी मांग, इतने छोटी छोटी बातों में, ये फूल मेरे को मिल जाए, ये माला मेरे को मिल जाए। जैसे कि हमने कोई महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा के पास रहे तो महात्मा सबको माला डाल, अपने को माला दिए तो माला डाल देंगे, बोलेंगे मैं तो माला लेके नहीं आया, मेरे को महात्मा जी माला डाले तो कैसा होगा। एक इतनी भी एक इच्छा मत रखो ना, दूर खड़े रहो, बहुत दूर, आपकी योग्यता होगी तो वो अपने से आ जाएंगे। ये स्वामी शरणागत जी महाराज है, उनका हमने एक ही बार दर्शन किया, श्री शिवानंद महिमा के यहां हमने दूर खड़े थे, चुप से रहे तो मैंने बुलाया, ऐसे कहा, ऐसे मैंने कहा, दंडवत प्रणाम किए, मैंने पहले भी किए थे, दूर से ही किए थे महात्मा को देख करके, गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी का, मैंने शिष्य हा इतना गले से लगाया। अरे सिदानंद के आंगन में तो झाड़ू लगा करके ये गुरु शरण आंगन हुआ है। देखिए वो कितनी बड़ी महानता है उस महापुरुष की, कि वो कहते हैं मैं जो बड़ा हुआ हूं मेरी नींव में उस महापुरुष की बात है। उनके लिए कोई आकांक्षा नहीं है ना, उनके लिए कोई इच्छा तृष्णा वासना नहीं, उदार है देने के लिए। तो क्या कहते हैं कृष्ण कि जब तक हम अपनी मांगों को पकड़ के रहते हैं तब तक हम फंसे रहते हैं। एक बार हम अपनी मांग को हम छोड़ दें, कृष्ण कहते हैं उसके बाद में मैं संभाल लूंगा। कब संभालेंगे, जब अपने आप को हम खाली कर दें। ये बंसी जो बांस की पोरी है, वो बंसी बांस की बनी हुई, उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती है, कोई गांठें नहीं होती है, वो खाली है। वो क्यों कृष्ण के हृदय में रहती है, कृष्ण के ओठ तक चली जाती है। बंसी कहती है मैं तो बोलती ही नहीं, श्री कृष्ण को जो कुछ सुनना है वो वैसे खुद फूंक मार लेते हैं, खुद सुन लेते हैं। यही बात है। तो क्या कहे ना कि कृष्ण कहते हैं कि जब तक तू मांग लिए हो मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो तुमने अपने आप को पकड़ रखा है। एक बार तुम अपनी मांग छोड़ दो, मुझसे ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। जब हम परमात्मा को कहते हैं कि वह दीननाथ है, दीनदयाल है, अंतर्यामी, तो हमारी जो आवश्यकता है क्या उसको पता नहीं है? क्या सब पता है, सब पता है। हमने बचपन में एक कथा हमारी दादी लोगों से सुनी थी कि जगन माता महालक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, क्या कहा? यही कि ये आप जगत में सबका पालन करते हैं। बोले हाँ, किसका? चींटी से हाथी तक सबको थोड़ा थोड़ा उनकी योग्यता के अनुसार ऐसे थोड़ा होता है, समझते हैं। तो महिलाएं थोड़े से करती हैं, हाँ कैसे भी करके पति के सामने बता देते हैं, आप बड़े हो तो हम भी कुछ विशेष है। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी ने एक चींटी को पकड़ के एक छोटी डब्बी में बंद करके रख दिया और दिन भर रख दिया। शाम को ठाकुर जी आए, हो गई सबकी सेवा? हाँ तो हो गई। अच्छा सबको? हाँ। छोटे से छोटे जीव को? हाँ। 84 लाख कहते हैं तो सबको भोग लग गया? हाँ। कोई भूखा नहीं है? नहीं है। होगा होगा देखो। और कोई भूखा छूट गया वो? अरे नहीं है देवी, अभी दिखाती हूँ। वो लाई दौड़ करके वो डब्बी, दिखाया अंदर से, चींटी भी थी, एक चावल का दाना भी था। कैसे आ गया वो? अपना जो इधर लगाती है ना ओ, तिलक करके लगाती वो। मुझको क्यों याद आ गया, हमारे कमरे में कोई चींटी नहीं थी, कल से 2-3 घूम रही है। फिर मैंने सोचा ये कहां से आई? रामजी भाई तो सफाई बड़ी करते हैं, रगड़ रगड़ करके सफाई करते हैं, फर्श को रोज नया बना देते हैं, कमरे को रोज सुंदर बना देते हैं। फिर देखा ओ, वो लक्ष्मी जी का प्रसाद है, वैकुंठ के नारायण का प्रसाद है। तो ये हमारी ईश्वर को पता है हमारी क्या क्या आवश्यकता है। किंतु मांग का मतलब तो यही होता है कि जब आदमी मंदिर जाता है तो भगवान से क्या, भगवान कहते हैं क्या किया तूने, मुझे कैंसर हो गया, ये क्या न्याय है? मंदिर में जाकर बोलता है क्या न्याय है? जिस मित्र का हमने उल्लेख कर रहे हैं उसने पत्र में लिखा है कि ईश्वर क्या न्याय युक्त है। वो क्या बोल रहे हैं? ईश्वर क्या न्याय युक्त है। हम बोलते हैं जब जब भी तकलीफ होती है शांत बैठो और थोड़ा पीछे मुड़ के देखो। पीछे मैंने ऐसे नहीं देख रहा है, पीछे मुड़ के मैंने देखना कल क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, पिछले जब से मैंने IAS के नौकरी में लगा हूं तो उस दिन से सोच लो कि मैंने कितना गोलमाल किया है, कितना गड़बड़ किया है, कितना हेराफेरी किया है, कितना बेईमानी किया है। एक सज्जन है वो हमसे फोन किए, स्वामी जी मैं तो आपको मिलने के लिए हमने अपॉइंटमेंट मांगा था, हमने कहा हम बैठे हुए ना तो तुम्हारे लिए 2 घंटा आपने पूछा है, तो समझते हैं आपकी आवश्यकताओं को, सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। नहीं नहीं बैठे हुए हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, आइए आइए। नहीं समझ में, आज छोड़ दीजिए, 2 दिन के बाद में हम आएंगे। आज क्या तकलीफ है? मैं टूर से आया हूं, यात्रा से आया हूं स्वामी जी, तो मुझको ये हिसाब सब सबमिट करना है। ये तो टूर से आए ना, 1200 किलोमीटर वो कार में 1200 किलोमीटर घूम के आए, हवाई जहाज की यात्रा अलग है, और कहां होटल में रुके, कहां खाना खाया, तो उसके बिल बनाने होते हैं ना, बिल सब बिल जुड़ता है। तो मैंने कहा तो उसके लिए क्या हो गया, 3 दिन तो गए थे, 3.5 दिन में हो गए तो क्या हो गया, तो उसके बिल को सेट करने के लिए तुमको 3 दिन चाहिए, ये तो गोलमाल है। 3 दिन की यात्रा रोज का रोज याद कर ले तो एक 10 मिनट में तुम्हारे बिल बन जाएंगे। और असली बनाना है सपोर्ट, वाउचर्स बोलते हैं वाउचर, असली वाउचर बनाना है तो 10 मिनट में बन जाएंगे, किंतु हेरा फेरी करना है, जोड़ना है, इसमें कितना पैसा यहां जोड़ा जाए, उसमें कितना पैसा वहां जोड़ा जाए, यहां कितना कम किया जाए, ताकि मेरी इस यात्रा में वास्तविकता में तो 28,000 रुपया खर्च हो गया है और मैं चूना लगा करके 48,000 कैसे कर लू, 20,000 कैसे बना लूं। ये जो हेराफेरी करनी है ना तो उसके लिए 3 दिन चाहिए आपको। बिस बैटर यू डोंट कम, आज तो मत आओ, 3 दिन के बाद में भी मत आओ। अपने आप को सोचना, अपने आप को ठठोलना, अपने आप को छिछोरा मत करना। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं कि हमारे कर्म के लिए कोई जिम्मेदार कोई भी नहीं है, खुद ही स्वयं हो, ईश्वर का कोई दोष नहीं है, आपकी प्रकृति। कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर सब कुछ करता है, किंतु ईश्वर ने आपको बुद्धि भी तो दी है, ईश्वर ने आपको विचार करने के लिए दिया है, आपको स्वतंत्र कर दिया है। बुद्धि से आप क्या सोच सकते हो सोचो, विचार से आप क्या सोच सकते हो सोचो। करुणा निधान है ईश्वर। हाँ, एक तिनका चुराते हो तब तक नहीं बोलते, सुई चुरा लिया तब भी नहीं बोलते, 5 किलो सोना चुरा लिया तब भी नहीं बोलते, बड़ा मुश्किल होता है। एक गांव में एक मंदिर था, बहुत बड़ा, उसको बोलते मोटा मंदिर, छोटे छोटे बहुत मंदिर थे, दादी भी वहां रहती थी। वो दादी जो है, वो दादी का व्यास सभी मंदिर में जाएगी, जब तक नहीं जाएगी दादी तब तक वो मंदिर में कोई पूजा पाठ आरती नहीं होता है, दादी के बिना नहीं सब चलेगा। वो मोटा मंदिर के जो महाराज थे तो वो यात्रा में जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि दादी आओ, ये भगवान के सारे गहने हैं, तो ये गहने हैं ना, ये तमाम ले लो रखो, फिर पहले तो यात्रा में ऐसा है, गया तो गया, भी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पैदल जाना होता था, श्रीजी महाराज ने जीवन निवाच मांगरूल निवाच। तो ये 3 साल के बाद में महाराज आए, वो मोटा मंदिर के महाराज गए तो दादी ने उनके लिए बड़ा विदाई समारंभ किया, फूले को बुले को वरघोड़ा समय वो सब कर दिया, और 3 साल के बाद में फिर भी जब आए तो कर दिया। तो वो जो पोटली थी गहने की सब लोगों के सामने महाराज ने दी थी, तो वही पोटली उठा करके दादी ने ये मोटा महाराज के मंदिर के पुजारी जी को दे दी, उन्होंने भी उठा करके वो अलमीरा में रख दी। अभी कुछ दिन के बाद में श्री रामनवमी आने वाली है, तो उसको ठाकुर जी को देंगे, गहने वगैरह देंगे। खोला तो जितने गहने थे वो सब खोटे थे, सोने के नहीं थे, जैसे असली थे वैसे ही हैं, किंतु सब खोटे गहने हैं। तो उन्होंने दादी को प्राइवेट में बुलाया, कहा कि ये क्या बात क्या है, हैराम, पोटली आपने जैसे दी थी वैसे उठा के रख दी, आप आए तो उठा के आपको दे दी, मैंने कुछ गलत किया है तो मैं 5वें नरक में पड़ू, ऐसे उन्होंने बोल दिया। महाराज को मुश्किल हो गया, सही बात, दिखा के तो दिया नहीं था, दिखा के लिया नहीं था। अब महाराज मन ही मन में कूटते रहे और कूट के उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। दादी की अब तक की जो बात थी वो अलग थी, वो दादी का जब 12वां 13वां हो रहा था उस दिन श्री जी महाराज सहजानंद स्वामी जी महाराज, जिसको भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, वो उस गांव में आकर के बाहर ठहरे हुए थे। तो गांव के लोग थे, गोवर्धन गांव का बहुत बड़ा आदमी था, वो गोवर्धन ने कहा महाराज जी बड़ा पुण्य है हमारे गांव की दादी का, बड़ा पुण्य कि आपके चरण गांव में आए उसके 12वें 13वें के दिन, महाराज जी गांव में आइए और सबको दर्शन का कथा वार्ता का लाभ दीजिए। बोले नहीं नहीं, कुछ सुखा है तो ले आओ, सुकड़ी लेके आए। महाराज ने देखा लेके जाओ, महाराज जी भोग तो लगा, बोले ना लगाओ लगाओ, नहीं महाराज नहीं, कहा नहीं। तो गोवर्धन ने पूछा बैठ जा, महाराज उसके सामने ऐसे किए, गोवर्धन को समाधि लग गई है, समाधि में ऐसे कर रहा है समाधि में, फिर 5 मिनट में उसको समाधि से नीचे भी लाए महाराज। श्रीजी महाराज को पांव पकड़, महाराज जी ऐसे कैसे हुआ, बोले इसके अपने कर्म से हुआ, दादी मंदिर रोज जाती है, जैसे यहां आप छोटा छोटा कुछ कुछ प्रणामी रख देते हो तो ऐसे देख करके देखेगी कि मैं 1 रुपया रख लूं और 10 का नोट उठा के अपने जेब में रख लूं। हाँ, तो यहां रुपया रख ले, कोई 10 का नोट उठा के रख ले। हाँ, तो ऐसे उनको भी आदत, जो मंदिर में केले चढ़ेंगे पिचक गए तो वो महाराज को दे देंगे, अच्छा वाला बढ़िया होगा, केरला से आया हुआ है तो अपने थैले में डाल देगी, और जो गली गली चीकू है आम है तो उधर रखेगी, बढ़िया आम अल्फांसो सुंदर है तो अपना थैले में डालेगी, मंदिर के लिए कारपेट मंगाना है तो ये इधर से भुलेश्वर से लाके डाल देगी, और ईरान से मंगाएगी गलीचा वो अपने घर में रख लेगी, और शिवरात्रि के दिन में 2 बोरी चीनी आती है, 1 बोरी घर में लाती है, सेकरीन डाल के दे देती है, और दूध मंगाती है दूध पाक बनाने के लिए, बहुत गरम गरम करके सारा मलाई निकाल लेती है उसमें पानी डाल के, ऐसा बहुत कुछ किया, ईश्वर ने माफ कर दिया। किंतु जब मंदिर के गहने नहीं है, उस निर्दोष पुजारी के हृदय में जो दिल हो गया उसके लिए। फिर क्या बोली थी, मैं गलत कर रही हूं तो इसलिए पांच में। वो गोवर्धन को जब समाधि लगी उसने देखा कि दादी पांच में नरक में पड़ी हुई है, विष्ठा है, मल है, मूत्र है, कीड़े उसको खा रहे, यहां तक दादी ऐसी हो रही है। और गोवर्धन वहां निकट में एक मुंडेर पर खड़ा था। गोवर्धनिया मैंने काट, मेरे को निकाल। गोवर्धन बोलता है मैं हाथ देने गया तो जम मेरे को भी धक्का लगने लगते, तो मेरे महाराज आपने मेरी समाधि ऐसे कैसे हुआ। महाराज जी ने बोला ऐसे हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है, हम समझते हैं हमारा जो जीवन एक आडंबर का है, दंभ का है, छल का है, कपट का है। मत करो नारायण, मत करो। ये दीवार भी हमको देखती है, दीवार की एक एक ईंट हमारे विचारों की साक्षी है, हमारे व्यवहार की साक्षी है। जीवन को ट्रांसपेरेंसी एकदम जैसा है वैसा ही रखो। बहुत मुश्किल है, बड़ा दुष्कर है, किंतु ऐसा तो करना ही पड़ेगा। छानू रे छपनू कहीं थाए नहीं, थाए नहीं, झांझर जो वागे तो झांझर के वाए नहीं। वो पांव में अगर आपने वो झांझर पहन लिया है, घुंघरू बांध लिए है, तो बिना छुम छुम के आप नहीं चल सकते हो, उपाय नहीं है आपके लिए। तो ये हम अपने जीवन को करते हैं कि कौन देखता है कौन। निश्चित ही लोग कहते हैं हमें जो तकलीफ होती है ईश्वर अन्यायी है, तभी तो मुझको कैंसर आता है। ऐसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं एक बार जब सब कुछ छोड़ के सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने रचना चाहे, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। कहते हैं कि तुम खुद संभाल संभाल कर बोझ से लदे हो, देहाती यात्रियों के जैसे हो, जो ट्रेन में चलता है ना देहाती यात्री, तो पोटली अपने सिर में रखता है, का है बोले नीचे रख दूंगा तो ट्रेन में बोझ बढ़ जाएगा। तो ये हम भी समझते हैं ये जो कुछ है हमारा बोझ हमने अपने सिर में, नहीं नारायण ऐसा नहीं है, ईश्वर का ये, यह नहीं तेरा यह नहीं मेरा, ईश्वर का ये राज है। फोगट खावे चोर कहावे, कुरान की आवाज है हर छोटी छोटी बात में, जागृत में जागृत। देखिए जैन मेडिटेशन में धम्म पद में बड़ी सुंदर कथा है कि एक व्यक्ति जा रहा है तो उसने देखा युवान है कि बहुत सुंदर पुष्करणी है, उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उसकी सुगंध से चारों ओर मुखरितता हो रही है, सुगंधित वातावरण हो रहा है। आहा ये कमल इतने सुगंधित हैं, तो उसमें जो जिस जल में ये उत्पन्न हुए तो जल कितना सुगंधित होगा। छोटी सी उंगली उन्होंने जल को स्पर्श कर दी, जैसे छोटी उंगली को स्पर्श किया तो स्पर्श होने से उसमें कुछ आंदोलन उत्पन्न होते हैं, तरंगे उसमें से एक देवता प्रकट हो गए। उस देवता ने कहा बंदे, ओ बुद्ध की बात है, बुद्ध जब युवान थे तब, बुद्ध जब युवान थे उस समय की बात है, बंदे देवता कहते हैं तुमने मेरी शांति को क्यों भंग किया। बुद्ध युवान थे, बुद्ध ने कहा मैंने कहा आपकी शांति को भंग किया हूं, मैंने तो जल को मात्र ऐसे स्पर्श किया था। जो उस देवता ने बुद्ध को कहा था वो बड़े गंभीर वचन थे, उन्होंने कहा देख तुम बुद्ध हो, बुद्ध को अपने जीवन में बिना कारण अकारण शांत जल को ऐसे स्पर्श करना भी उचित नहीं, माइंड योर ओन बिजनेस। जिस गांव में तुम्हें जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछते हो तुमने, जो सुगंध है तो है, तुम्हें ऐसे स्पर्श करने की आवश्यकता क्या है। तो जो अध्यात्म के पथ पर है वो बिना कारण इतना भी स्पर्श ना करे, उसके भी हमारे कॉज एंड प्रॉन्स जुड़े हुए हैं, उनके भी कारण और असर जुड़ी हुई है। क्या हम अपने जीवन में ऐसे जागृत हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चल भी नहीं पाओगे, जड़ भरत के समान। जड़ भरत ऐसे ऐसे चलते थे, राहुगढ़ ने बोल दिया है कौन चल रहा है, तो लोगों ने कहा ये नया आने वाला, अबे तू मोटे समझता क्या है, ढीढ़ है तू, अभी दिखाता हूं। जड़ भरत जी ने कहा मोटा कौन होता है, शरीर में रहे तो मोटा होता है, पतला होता है, राजा कौन होता है, रंग कौन होता है, राजा भी मिथ्या है, रंग भी मिथ्या है, जो दिख रहा है वो केवल एक ही आत्मा है, तब राहुगण की बुद्धि ठीक हो गई। क्या हम ऐसे सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते तो ऐसे सोचने का अभ्यास करना पड़ेगा। संसार में तो रहेंगे, संसार में रहना गलत नहीं है, पानी में कूदना है, कूद भी जाएं, किंतु डूबना नहीं है, जाकर के वापस आ जाए। जो संसार में रहते हैं तमाम कार्यों को करते हुए भी उससे अलग थलग रहना, उससे अलग थलग रहना। कल क्या कहा था महाराज जी की बात, वो मच्छी मारा है, वो जाल फेंकता है तो मछली है जो मछियारे के पांव के नीचे घूमती रहती है, वो जाल में नहीं फंसती है। तो हमको क्या करना, बस वही बात। अपने शादियां देखिए, आजकल तो शादियों में मंडप होते ही नहीं थे, पहले शादियों में मंडप होते थे, तो महिलाएं हैं वो एक दूसरे की वो गले में जो माला नहीं लाई है, अंगूठी नहीं लाई है, हेयर स्टाइल कैसी है, लिपस्टिक कैसी है, वो स्प्रे कैसा है, उसको बातें करती हैं। बड़े लोग हैं वो इनकम टैक्स वो सब बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो जो शादी का जो मंडप के जो खंभे होते हैं स्तंभ, उसको पकड़ के चक्कर चक्कर घूमते घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वाह 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 करते रहते हैं, कौन कोको कोला पी रहा है, कौन दूध पी रहा है, वो सब देखते रहते हैं। और इनके बीच में वो मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, गुड़िया को देखते हैं, भाई को देखते हैं, दूध वाले को देखते हैं, आइसक्रीम वाले को देखते हैं, घूमते रहते हैं, मगर खंभा छोड़ते नहीं है। वो खंभे को नहीं छोड़ना, अपने गुरु में उसके निष्ठा को, भगवान को, नाम के जप को कभी भी नहीं छोड़ना, कैसी भी अवस्था हो जाए को नहीं रुकना चाहिए। कहते हैं कि एक बार की बात है, हम छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर कभी दृष्टि करते नहीं। कहते हैं कि एक बार की बात, अद्भुत बात है, आम सूत्र, जो इंसान है वो कपड़ा बुनता है, वो बुनने के समय में क्या सोचता है, मुझे पता नहीं। कभी आपने कपड़ों की मिल देखी कि नहीं? मैंने एक मिल देखी, वो जैसे ये हमारा कमरा इतना बड़ा है, उससे बड़ा लंबा कमरा है, वो छह विभाजन में वो मशीन है, जेकोस्लोवाकियन मशीन है। यहां से ऊन डाल दो, वो ऊन जो भेड़ बकरियों का डाल दो, जैसा कट के आया है वैसा का वैसा ही, उसमें वो शकर्स भी है ऊपर, जूम करके कचरा ऊपर ऊपर ले लेता है, ऊन साफ होकर के यहां ऐसे ऐसे हो जाता है, वो धीरे 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 करके वो एकदम ऐसा करके उसमें से तार बनना चालू हो जाते हैं, हजारों तार बन जाते हैं। तार को जैसे डिजाइन किया है ऐसे ऐसे करके वो कपड़ा बुनते हैं, और वो छह भाग है, छह भाग में अलग अलग कुछ ऑयल डालना है, एक ठीक समय पर हर छह घंटे के बाद में, ABQ ZV XY 87 पता नहीं क्या क्या ऐसा, वो जो तेल है उसके कुछ ड्रॉप डालने हैं। मगर हमारे लोग हैं गुजराती में बोलते जावा देव ने, चल जाने दो क्या होता है, वो जाने तो क्या होता है, मशीन चल रही है, अब वो आगे पीछे तेल डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ये नहीं है तो केरोसिन ही डाल दो, सरसियो तेल डाल दो, कुछ भी डाल दो, मशीन, उनको पता नहीं है क्वालिटी चली गई, क्वालिटी चली गई, क्या मुश्किल बातें बताइए। वो मशीन पहले क्या था, वो हजारों तार में से अगर एक तार भी टूट गया तो पूरी मशीन खड़ी हो जाती थी, अब तो तार टूटते रहते हैं, मशीन चलती रहती है, ये नालायकी कौन करता है। इतनी छोटी छोटी बातों के बाबत में जागृत कौन नहीं रहता है। मोहम्मद साहब थे, उनकी एक आदत थी, दिन भर में उनको जो कुछ मिलता है शाम तक वो सब कुछ बांट देते थे, सो जाते थे वो रोज का रोज। त्यागराज के जीवन में भी ऐसी बात थी, त्यागराज जी हैं, उनको कभी भी कुछ भी रहे तो किसी से दान नहीं, कीर्तन करते करते बाजार में जाएंगे, लोग एक घर से वो चार मुट्ठी अनाज लेते थे, चावल ही होता है दक्षिण भारत में, और इसी से उनका गुजरा चलता था। उनके पास जो शिष्य आते हैं उनको पढ़ाने के लिए भोजन चाहिए तो ये रोज जाएंगे, घंटा सा गांव में घूम के आ जाएंगे। राजा को लगा ये इतने बड़े संत हैं, भगवान से बात करते हैं, लाखों कृतियां इन्होंने लिखी हैं, ये जो दक्षिण भारत की जो संगीत है उसमें पुरंदर दास और त्यागराज की कृति को छोड़ करके कोई और कृतियां नहीं है, कर्नाटक में और तेलुगु भाषा में भगवान के श्री रामचंद्र जी के कृष्ण के पद हैं पुरंदरदास जी त्यागराज जी। ओ एक दिन राजा ने अपने वजीर से कहा, चुपचाप से जा और हाथ भर के सोना मोर है वो उनके चावल जो जमा करते हैं ना वो कीर्तन करते रहते, थैला पीछे लटकता रहता है, लोग उसमें डालते रहते, डाल के आ जा। थोड़ा आवाज हुआ तो देखा कि वजीर हैं, उन्होंने रस्ते के बीच में सारा थैला खाली कर दिया। महाराज फिर से हमारे अन्न को पवित्र नहीं करना। एक दिन त्यागराज यात्रा में जा रहे थे, त्यागराज तो नहीं लेंगे, उनके शिष्यों को कुछ दे दिया सोना मोर। त्यागराज निर्भय होकर के जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और चारों ओर से हल्ला हो गया है, चोर आएंगे, लुटेरू आएंगे, डकैत आएंगे। तो त्यागराज जी ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं, हम निर्भय, हमको क्या तकलीफ है। वो एक शिष्य आकर के रो पड़ा, नहीं महाराज जी, मैंने थैला भर के सोना सुवर्ण मुद्राएं, क्यों कैसे आई। राजा ने कहा है कि जब त्यागराज जी इतनी दूर यात्रा में जा रहे हैं, बोला है चोर को, आओ हमारे पास में ये लेकर के जाओ। मामन साहब के पास में भी जो दिन भर में कुछ मिलता है वो मामन साहब है, शाम तक सब बांट देते हैं। रात में सोने के पहले वही अपना एक कपड़ा जो पहना है और जेब में कुछ भी नहीं, तस्बीह तक नहीं, जमीन के ऊपर में एक मोटा कपड़ा बिछा करके सोते थे। पत्नी को बड़ा दुख होता था, कभी ऐन मौके पर कोई तकलीफ हो जाए तो हमारे पास में एक भी दिनार नहीं रहेगा। बीबी ने क्या कहा, बेगम ने यह कहा, एक दिन 5 दिनार संभाल के रखती है, नहीं बताया मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो तड़प रहे हैं, दाएं बाएं करवट बदल रहे, इतने दुखी हैं, क्या करें। हठात से बैठे, बेगम को बुलाया, बताओ आज दिन भर में जो कुछ मिला है नहीं बांटकर कुछ सलामत रखा है क्या। रो पड़ी, 5 दिनार रखे हैं, काहे, कभी कुछ हो जाए इन मौके पर जाओ किसी मांगने वाले को देकर के आओ। रात 2 बजे है, 2 बजे कौन मांगने वाला होता है, जाओ कभी हो भी सकता है, तुम पकड़ने वाले होती हो, छोड़ने वाली हो जाओ तो लेने वाला कोई मिल जाएगा, जाओ। मुझको नींद नहीं आ रही है, मेरे बदन में आग लगी हुई है, मैं तड़प रहा हूं, देख नहीं रही हो। बेगम ने दरवाजा खोला तो वहां एक भिखारी खड़ा हुआ था, दे दो 5 दिनार इसको। आधी रात में भगवान भी आपको सहायता करने के लिए रहता है। मोहम्मद साहब ने जीवन भर अनुभव के बाद में हर सुबह वह संभालने मौजूद रहा कि तुझे बुद्धि ना आई। वो अपनी पत्नी को, तुझे जीवन भर के अनुभव के बाद जो हर सुबह मौजूद रहा और जरूरत पड़ेगी तो हर सुबह हमें मिल जाती है। बिस्तर में से उठने के साथ में हमको क्या चाहिए, वो अल्लाह हमारे ऊपर में दुआ करके रहम करके दे ही देते हैं। पत्नी बाहर गई थी रात में, देखा उसने चकित होकर के एक भिखारी द्वार पर खड़ा है, लौट आई। वो कहते हैं कि उस समय में मोहम्मद साहब ने चादर ओढ़ी और अपने हाथ से जो चादर ओढ़ी, बस फिर और चादर नहीं उन्हें ओढ़नी पड़ी, उनकी अंतिम सांसें थी। औरंगजेब ने अपने जीवन में अपने हाथ से वह कुरान शरीफ लिखता रहा, उसको बिक्री करता था और बिक्री करने के बाद में उससे जो आमदनी होती थी उसी से वह अपना जीवन यापन करता था। उसने लिखा, मेरी मृत्यु के बाद में मेरे लिए कोई मकबरा नहीं बना देना पड़ा और मेरे पीछे इतने पैसे बचे हुए हैं, केवल उसी में से ही कोई अंबर, कोई सिल्क, कोई रेशम का कफन डालने की आवश्यकता नहीं है, मोटी बोरी का कफन डाल देना। मेरा जनाजा जो उठेगा तो लोगों के लिए किराए का जो जनाजा आता है उसी में लेके जाना, कोई बड़ी दीवानगी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह का एक बहुत नाचीज बंदा हूं। वो कितना भी क्रूर रहा होगा किंतु उसने अपने जीवन में एक नेकी तो रखी थी। हम मांगते चले जाते हैं, हम बटोरते चले जाते हैं, हम पता नहीं कहां से अपने स्वार्थ को, वो तो कहते हैं कि देखिए अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनहा पर, तुम केवल उस पर भरोसा रख लो, यही तुम्हारी उपासना बन जाएगी, यही तुम्हारी साधना बन जाएगी। एक इतना अत्यंत भरोसा कि आपकी जिंदगी में एक नया रूप आ जाएगा, यही उपासना है। ऊपर होता है समीप, उपनिषद ऊपर आसन, ऊपर समीप आसन, आसन लगाना ईश्वर के पास संपूर्ण श्रद्धा। स्वामी राम है वो अमेरिका गए थे तो हमेशा अपने आप को राम बादशाह बोलते थे, राम बादशाह। तो लोगों ने कहा ये क्या राम बादशाह बोलता है, लंगोटी बांध के घूमने वाला है, अपने आप को राम नहीं बोलता है। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने आप को बादशाह क्यों कहते हो। राम ने कहा कुछ दिन मेरे पास रह जाओ तो पता हो जाएगा मैं अपने आप को क्यों बादशाह कहता हूं। वह आदमी कुछ दिन राम के पास में रहा, अनुभव हुआ कि यह आदमी है बड़ा अद्भुत। धीरे धीरे अनुभव हो गया कि ये कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, जिनको कछु नहीं चाहिए वह सहन के शाह मांगता नहीं है। जीवन में हम लोग, हमें तो व्यवहार तो रहेगा, व्यवहार बोलने से व्यवहार में हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा तो नहीं है, किंतु व्यवहार के मध्य रहते हुए भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने निजी सुख संपत्ति साधन इच्छा ऐसाओं से परे हो जाए। जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, जिस कुछ करते हैं समाज के लिए करते हैं तो उसके लिए सुविधा, तो जैसे कि हमने समाज में रहे तो ये दो धोती पहन लिए तो क्या फर्क होता है। अपने आप को अलग थलग रखना, निष्कपट निष्पाप निस्पृही रखना, हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है ईश्वर को बताए, हमारी साधना ये बन जाए। राम ने कहा भिक्षा का पात्र भी मैंने तोड़ के रख दिया है, जिस दिन से मैंने मांगना बंद कर दिया है सारी दुनिया मेरी हो गई है। राम ने कहा तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो भीतर है वो ही बाहर आ रहा है। उपासना परमात्मा की सघन प्रतीति करा देती है, उपासना बढ़ती है तब वासना घटती है, जिसका भजन बढ़ेगा उसका वजन कम होगा। वजन शरीर का नहीं होता है, वजन अहंकार का होता है। भजन को बढ़ाओ, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ओम शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।